आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।
श्रोताओं, आपका स्वागत है आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं संसद के तीन दिन के विशेष सत्र के बारे में, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम से में संवैधानिक संशोधन से जुड़े तीन खास कानूनों पर चर्चा हो रही है। एक बार फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। उमेश जी, कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है।
जी नमस्कार, धन्यवाद।
और चलिए सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, वहां अब भी गृह मंत्री अमित शाह अपने जवाब दे रहे हैं।
माननीय बिल के
ये कन्विंसिंग कर रहे हैं सुरेश जी, सुरेश जी,
अरे यार छोड़ो,
सुरेश जी कन्विंसिंग मत करो, वोट डरने वाला।
माननीय
कन्विंसिंग मत,
ये जो बिल मेरे साथी अर्जुन राम मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें अनुच्छेद 81/1 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे 550 से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 तक की जाएगी। माननीय अनुच्छेद 81(2)(b) उसको भी कोई बदलाव के बगैर हम कह रहे हैं, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। अनुच्छेद 81(3) में जनसंख्या को नवीन जनगणना के अनुसार परिभाषित करने का जो है उसमें हम प्रोविजो क्लॉज लगाते हैं और इसको समाप्त करते हैं। इसके साथ 170A जो राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सीटों को निर्धारित करता है उसको जस का तस रखते हैं। 172 समानता के सिद्धांत राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो है इसके अंदर हम बदलाव करते हैं। और ये सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि 50% सीटें हर विधानमंडल और संसद में बढ़ाकर माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। माननीय मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ है, मगर आज किंतु परंतु अगर मगर से कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। माननीय इसके मुझे दो ही कारण दिखे कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। अगर ये महिला आरक्षण होता है तो देश की माताओं बहनों में मोदी जी को यश मिलता। माननीय मोदी जी ने बड़ा हृदय कर एडवर्टाइज देकर उनको यश देने का कह दिया, फिर भी ये नहीं मानते हैं। माननीय उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती हैं, उनको क्यों भला रिजर्वेशन दे। तो मैं बताता हूं कि आप रोक नहीं, आज ये 23 में इस सदन में से देश की महिलाओं को जो वादा किया था 23 में 33% आरक्षण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, पूरे सदन ने वादा किया था, इस केस इससे पीछे हट रहे। माननीय ये पहली बार नहीं हुआ, ये साहबानों में भी पीछे हट गए, ट्रिपल तलाक में भी पीछे, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे हट। माननीय मैं अभी भी, हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए, ये अंतरात्मा की आवाज का नारा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, इंदिरा गांधी जी का है, मगर मोदी जी को थोड़ा समझ फिर हो गया। उस वक्त विरोध पक्ष में अटल जी, अडवाणी जी थे, यहां आत्मा ही नदारद है, अंतर आत्मा कहां से लाना। माननीय ये रूथलेस पॉलिटिक्स का, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा इसका यश किसको मिलेगा, इसके लिए आप महिलाओं का आरक्षण हटका रहे हो। चुनाव में जहां जहां जाओगे इस देश की महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और रास्ता भी लेंगे। मान्यवर, मैं आप इस सदन के कस्टोडियन हो, अभिभावक, मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सदन की गरिमा पूरे देश में और विश्व में बनी रहे। मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है, सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं, सदन के रास्ते पर एक किस प्रकार का विपक्ष के नेता का बिहेवियर, किस प्रकार की भाषा है, क्या वो समझते हैं कि भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए, स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मान्यवर, ये कहते हैं ये क्रूर बिल है, महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है, उत्तर और दक्षिण के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, दक्षिण का प्रतिनिधित्व तो कम हो जाएगा। इतना कल समझाने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट आता है मान्यवर, तो मैं मानता हूं ये जानबूझकर दिया गया स्टेटमेंट है। मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के उनमें को इस देश का परिचय कराना चाहता हूं कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है इस देश में, इतना उपकार याद करती है। और हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली तारका को भी याद रखती है। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।
तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री का जो लोकसभा में वो इस जो इम्पोर्टेंट एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो इस वक्त आया हुआ है लोकसभा में, उस पर वो अपना जवाब दे रहे थे। और अब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुकी हैं राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुषमा यादव। प्रोफेसर यादव, आपका कार्यक्रम में स्वागत।
धन्यवाद, नमस्कार।
तो शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी सुषमा जी, अभी हम जब सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री को, उनका जो पहला स्टेटमेंट था जब उन्होंने बोलना शुरू करा, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है, ये जो विपक्ष का जो इसका विरोध है, ये असल में विरोध इम्प्लीमेंटेशन लागू करने का नहीं है, ये पूरी तरह महिला आरक्षण विधेयक का ही विरोध है। इस पर आप क्या कहेंगी?
असल में देखिए, ये तो राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो बिल लाई है बीजेपी इस समय, या सरकार जो बिल लाई है, और विपक्ष के सामने बहुत मार्ग नहीं है। वो महिला आरक्षण का विरोध तो नहीं कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें?
सुषमा जी, मैं आपको रोकूंगी, हम एक बार फिर वापस रुख कर रहे हैं लोकसभा का।
जी,
मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा, लॉबियां खाली कर दी जाए।
जी, तो अभी हमने सुना कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, उन्होंने कहा कि अब जो मतदान की स्थिति आ गई है और मतदान जो होगा वो मत विभाजन द्वारा होगा। उमेश जी, आपसे क्विक कमेंट लेना चाहूंगी, जब हम मत विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या एग्जैक्टली क्या मतलब है?
देखिए, ये संविधान संशोधन विधेयक है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक इसको दो तिहाई, हर सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित होना जरूरी है। और एक चीज और है कि सदन का एक कोरम होता है, तो कोरम के हिसाब से 1/10 मतलब दसवां हिस्सा अगर सांसद मौजूद हैं तो सदन की कार्यवाही चल सकती है। लेकिन ये संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए ये कोरम 50% 50% का होगा, यानी मतलब 273 सांसद उपस्थित होने चाहिए और अगर वो मतदान करते हैं तो उसमें भी दो तिहाई बहुमत मिलना चाहिए। तो ये इसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, पार्लियामेंट के रूल बुक के हिसाब से प्रक्रिया है, तो इस तरह से ही अभी मतदान होगा।
जी, सुषमा जी, वापस आपके पास आते, जैसे हम बात कर रहे थे कि गृहमंत्री ने कहा लागू होने पर नहीं और का विरोध नहीं है, ये पूरी तरह से बिल का ही, इस विधेयक का ही विरोध कर रही है विपक्ष। हालांकि विपक्ष कह रहे हैं, सारे दलों ने कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं, पर इस विधेयक को परिसीमन विधेयक के साथ जोड़ने का वो विरोध कर रहे हैं,
उसका विरोध कर। नहीं, मैं समझती हूं, माननीय गृहमंत्री जी जो बोल रहे थे अभी, वो दोनों बातें कह रहे थे कि एक तो ये कह रहे थे कि विपक्ष किंतु परंतु कर रहा है, महिला आरक्षण का विरोध तो नहीं कर पा रहा है, और फिर विपक्ष ने एक मार्ग निकाला कि महिला आरक्षण का विरोध तो ना करें लेकिन परिसीमन का विरोध करना आरंभ कर दें। और इसलिए आपको याद होगा, अभी जब माननीय गृहमंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने दो बातें कही बार बार कि परिसीमन क्यों कर रहे हैं हम। क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं इस देश में अभी, वो इतनी अनइवन है कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू, जो एक मत एक व्यक्ति और एक उसका कीमत वोट मत, उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है 39,00,000 से 60,000, विच इज ए वेरी वेरी ह्यूज मार्जिन।
एब्सोल्युटली।
तो उसका एक तो वो उसका कारण दे रहे हैं इस बात का, फिर ये भी कह रहे हैं कि जब 60 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या थी और अब 140 करोड़ जनसंख्या है, और मुझे लगता है इसमें समझदारी भी है, क्योंकि जब महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो वो ये कर रहे हैं कि बढ़ा भी रहे हैं सीट, ताकि बहुत ज्यादा जिसको इलविल कहते हैं, जलन कहते हैं, परेशानी कहते हैं, सत्ता छोड़ना सरल नहीं होता, सीट छोड़ना भी सरल नहीं होता, तो सीट बढ़ा दें और उतनी महिलाओं को, उसमें से 50% महिलाओं को आरक्षण भी दे दें या 33 दे दें।
जी,
वो यही कह रहे हैं, 50% बढ़ाएंगे और उसमें से 33% महिलाओं को दे देंगे, तो एक प्रकार से वो सीट्स तो रह गई जो अभी तक एमपीज हैं, सो दे आर मेकिंग देम सिक्योर ऑल्सो।
जी,
और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं, हम संघीय ढांचे को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसलिए सब राज्यों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि आवश्यक इसलिए है कि जब हम एक तरफ अब जनगणना इतने वर्षों तक नहीं कर पाए, कोविड के कारण वो कह रहे हैं हम 21 में नहीं कर पाए, तो अब जब तक ये होगी जनगणना तब तक फिर से महिला आरक्षण को रोके रखना वह महिलाओं के पक्ष में तो नहीं जाता। और एज अ वुमन आई वुड ऑल्सो से जितनी शीघ्र हो जाए, शुभ से शीघ्रम हमारे यहाँ कहा जाता है, जितनी शीघ्र हो जाए उतना अच्छा है।
और आप जो बात करें सुषमा जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे गृहमंत्री भी कह रहे थे कि अगर ये अब लागू नहीं होता है ये विधेयक, तो यानी कि 2029 में अगर हम अगले सेंसस की वेट करें, उसके नतीजों की हम उसका इंतजार करें, तो 2029 में ये बिल लागू नहीं होगा, यानी कि सीधी सीधी बात पहुंचती है 2034 के आम चुनाव
कम से कम।
और देश की 50% एक आबादी, इतनी महत्वपूर्ण आबादी को आप 8 साल तक उसके जायज हक से वंचित रखना चाह रहे हैं।
जी, तो इसलिए महिलाएं सच में उसे माफ नहीं करेंगी। और अब बात आ गई है,
जी,
क्योंकि बात जब सामने आ गई है, सरकार चाह रही है, उसको ला भी रही है अधिनियम को, और देखिए कितना सुंदर नाम दिया है, नारी शक्ति वंदन।
जी,
मात्र ये नारी का प्रतिनिधित्व नहीं है,
जी,
उसका सम्मान भी है उसके साथ साथ। और अभी महिलाएं हैं लेकिन जब वो संसद में आएंगी तो संसद की परिचर्चाओं का स्तर भिन्न हो जाएगा,
बिल्कुल,
उसका चरित्र बदल जाएगा, उसकी भाषा बदल जाएगी, उसकी मुझे आशा है कि गरिमा और मर्यादा भी बदल जाएगी, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा।
प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए।
जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हां हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे, मतदान में भाग नहीं लेना पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हां नहीं मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन जैसा भी मामला हो पर अपने मत की जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। काइंड अटेंशन ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स इज इनवाइटेड टू द पॉइंट्स इन द ऑपरेशन ऑफ द ऑटोमेटिक वोट।
तो श्रोताओं भी हमने सुना कि लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जो अभी पूरी प्रक्रिया वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी जो मत विभाजन से इन तीन महत्वपूर्ण बिलों पर जो वोटिंग होगी उसकी पूरी प्रक्रिया उन्होंने समझाई। उमेश जी मैं आपके पास आऊंगी। हम परिसीमन बार बार यही बात हो रही है कि विपक्ष कह रहा है हम बिल में पूरी तरह समर्थन देते हैं हमारा उसमें विश्वास है लेकिन हमें परिसीमन से परेशानी है हम नहीं चाहते कि वो कहते हैं आप मौजूदा स्वरूप जो भी लोकसभा का इस वक्त स्वरूप है आप उसमें बिल ले आइए हम उसको समर्थन करेंगे पर परिसीमन से आप क्यों जोड़ रहे हैं।
इस पूरी चर्चा में एक चीज को याद करना जरूरी है जो गायब है मैं उसको याद दिला देना चाहता हूं कि जो 2023 का नारी शक्ति बंधन अधिनियम है उसको सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कर आज ही इसे लागू कर दिया।
हाँ, बिल्कुल।
तो इसका मतलब ये है कि अगर इस विधेयक का जो हश्र होगा जो होगा इसका मतलब ये है कि सरकार महिला आरक्षण 2029 के ही लोकसभा चुनाव में देने के लिए आमादा है तैयारी कर चुकी है।
इस पर भी विपक्ष ने कहा कि जब इसके संशोधन इस विधेयक के संशोधन पर चर्चा हो रही है तो आप उसको कैसे नोटिफाई कर सकते हैं।
अब बिल्कुल उस तरह से तो विपक्ष सवाल उठा सकता है लेकिन सरकार ने अपनी चाल चल दी है उसने एक तरह से कदम उठा लिया है। और आपने जो परिसीमन की बात की तो मैं थोड़ा सा इसको अतीत में ले जाना चाहूंगा। गांधी जी की जीवनी लिखी है मोहनदास नाम से उन्हीं के पोते राजमोहन गांधी ने उसमें इस बात का जिक्र होता है और जिक्र यह है कि गांधी चाहते थे संविधान की जब बातचीत चल रही थी कि हमारा संविधान कैसा होगा तो गांधी चाहते थे कि संविधान की मूल इकाई सोसाइटी हो समाज हो गांव हो लेकिन अंबेडकर और नेहरू ने इसको एकदम से खारिज कर दिया था। मैं उन शब्दों को राजमोहन गांधी ने जिन शब्दों को कोट किया जो अंबेडकर के शब्दों में यहां कोट करना जरूरी नहीं समझता तो उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं व्यक्ति होना चाहिए संविधान की मूल इकाई भारत की मूल इकाई यूनिट जिसको बोलते हैं। तो जब एक यूनिट है तो उसमें उत्तर और दक्षिण कहां से आ जाता है चाहे वो उत्तर का नागरिक हो चाहे भारत।
तो अभी हमने देखा कि वहां लोकसभा में इन विधेयकों पर मत विभाजन द्वारा वोटिंग हुई और नतीजे हमारे सामने दिख रहे हैं। इन विधेयकों के पक्ष में 278 पहली डिवीजन मत विभाजन में 278 वोट पड़े हैं, उसके विरोध में 211 वोट पड़े हैं, किसी ने भी एब्सटेंशन नहीं किया, यानी कि पहली डिवीजन में 489 वोट्स पड़े हैं। सुषमा जी, आप क्या कहेंगी कि
देखिए समय तो ऐतिहासिक है, पर मुझे लगता है थोड़ा जल्दी वोट करा लिया है इस हिसाब से तो
जी,
और मे बी सम कैलकुलेशंस हैव गॉन रॉन्ग, या इससे भी सरकार कुछ दिखाना चाहती है यहां की जनता को
जी,
कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं, हम कितना आमादा हैं, लेकिन विपक्ष साथ नहीं दे रहा है
जी,
और ये विपक्ष अब इसमें आएगा, गिनती में आ जाएगा। और ये महिला आरक्षण का विरोध है, परिसीमन की बात सब भूल जाएंगे, याद रहेगा महिला आरक्षण
जी, और ये बात गृहमंत्री ने बार बार कही,
बार बार कही है।
उमेश जी आप क्या कहेंगे?
देखिए अभी तो इसको फाइनल रिजल्ट मत मानिए, आखिरी नतीजा, क्योंकि जैसा कि अभी तक होता रहा है, अभी हो सकता है कि मत विभाजन जो पर्ची के जरिए है उसकी भी मांग हो और वो होगा तो उसके लिए, लेकिन प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं ना फर्स्ट अपियरेंस, वो दिख रहा है कि ये संविधान संशोधन विधेयक उस तरह से जिस तरह से सरकार उम्मीद कर रही थी उसको मंजूरी नहीं मिली है। तो इसके एक चीज तो सामने जा रहा है कि अब जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश करेगी विपक्षी दलों के बारे में बताएगी कि देखो भाई हम तो विधेयक लेके आ गए थे लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं है। और आप जानते हैं कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में भी चुनाव होने हैं, प्रक्रिया जारी है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो भारत कल सोचता है वो आज सोचता है, तो भद्रलोक में इस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल उछालेगी, और जिस तरह से उसने अपना पूरा जोर लगा रखा है मुझे ऐसा लगता है कि अब उसके हाथ में, देखिए सरकार के हाथ में जैसा कि हमने चर्चा के शुरुआत में आपने सुषमा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर वो पारित होता तो श्रेय मिलेगा और नहीं पारित होगा तो उसके सामने क्लियर कहने के लिए मिल गया कि देखो भाई विपक्ष ने साथ नहीं दिया। और मुझे याद आता है जब वो संविधान का वो 73वां संशोधन गिरा था तो कांग्रेस ने नारा दिया था कि जिनकी वजह से संविधान संशोधन हमारा हारा उसको सबक सिखाएगा वोट हमारा, तो अब ये बात भारतीय जनता पार्टी बोलेगी इस बार जी।
सुषमा जी, पर विपक्ष अब इस बात को किस तरह से जस्टिफाई करेगा वो, क्या क्योंकि अब जैसे कि कहा कि अब जो सारा नैरेटिव जैसे चाहे पास हो अल्टीमेटली ये बिल या ये ना पास हो, सारा जो एक तरह से जो इनिशिएटिव है सारा वो उन्होंने वो
बीजेपी
के पास है, सत्ता पक्ष के पास है, तो अब विपक्ष इसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है या क्या किस तरह से
कोई बहुत अच्छे पक्ष तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमने उत्तर दक्षिण को बचाया है, दक्षिणी राज्यों का साथ दिया है, हो सकता है उसके साथ अन्याय हो जाता
जी।
वो ये भी कहना चाह रहे होंगे जो बार बार अभी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जाति जनगणना नहीं करवाना चाह रहे थे इसलिए महिला आरक्षण ले आए हैं और उसको जनगणना से हटा करके कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक वुमेन विल बाय इट
जी।
इस देश के वोटर्स और विशेष तौर पर महिलाएं जब आरक्षण दिखाई देता है और वो सत्ता में आरक्षण होता है तो उससे वंचित होना अपने आप में ऐसा ही है जैसे वो कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी छीन लेते हैं उसको कोई माफ नहीं करता
जी।
ये मैकियावेली ने कहा था वैसे तो द प्रिंस में कि जो व्यक्ति है भारतीय नहीं व्यक्ति ही है यूनिवर्सल ही है और वो अपने पिता के हत्यारे को तो क्षमा कर सकता है लेकिन संपत्ति लेने वाले को क्षमा नहीं करता, और उसी प्रकार से जो सत्ता से वंचित करते हैं उसको भी व्यक्ति क्षमा सरलता से नहीं करता और इस देश की महिला शक्ति भी उसको आसानी से नहीं लेगी। अब बात इंटरप्रिटेशंस की आएगी, किस प्रकार से राजनीतिक दल इसको ले जाते हैं लोगों के बीच में, जैसा अभी उमेश जी कह रहे थे ये बात बिल्कुल सही है, मैं मास्टर स्ट्रोक कह रही थी, उन्होंने कहा दोनों हाथों में अब सत्ता पक्ष के दोनों हाथों में लड्डू हैं, हम ले भी आए, हमने पूरी कोशिश भी की, हमने पूरा जोर भी लगाया, हमने स्पेशल सेशन भी बुलाया, हमने व्हिप भी जारी किया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को यह भी कहा कि हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो इतनी बात हम मान लेते हैं, फिर भी विपक्ष ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब वो वास्तव में नारी शक्ति का वंदन करने के लिए तैयार नहीं है
जी।
ये बात लेकर जाएगी और इसका विपक्ष कैसे लॉजिक देगा या क्या एडवोकेसी करेगा अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर एक ऐतिहासिक क्षण एक प्रकार से टल गया है, हम अभी देख रहे थे, साक्षी बन रहे थे उसके।
तो मैं एक सवाल आप दोनों से करना चाहूंगी, अगर हम राजनीति से थोड़ा आगे बढ़े, अब जो भी इसका अल्टीमेटली जो भी इसका डिसीशन आता है, जो भी इस विधेयक इन विधेयकों का जो भी नतीजा निकलता है वो एक बात है, पर इतने अहम विधेयक को पास अगर ये नहीं होता है, पारित नहीं होता है, तो ये देश की जो महिलाएं हैं उनके भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। एक तरफ आपकी महिलाएं चंद्रयान मून मिशन के इसरो में इतनी बड़ी बड़ी भूमिका, आपकी टॉप साइंटिस्ट हैं, आपकी महिलाएं खेल के मैदान में तिरंगे झंडे को लहरा रही हैं, आपकी महिलाएं टॉप कंपनीज में लीड कर रही हैं, पर दूसरी और आपकी इतनी सशक्त महिला प्रधानमंत्री रही, दो महिला राष्ट्रपति, उसके बावजूद आप उनका विरोध कर रहे हैं राजनीति में जहां सबसे इंपॉर्टेंट डिसीशंस लिए जाते हैं। तो एक तरह से ये पूरा पीछे लेकर जा रहा है भारतीय महिलाओं को, और इसका असर डेफिनेटली देश की विकास पर भी पड़ेगा। सुषमा जी,
अवश्य पड़ेगा। आप देखिए, और मुझे लगता है ये तैयार होना चाहिए था अब तक। G20 के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर जाएंगे
जी।
और पूरे विश्व में आप देखिए, जहां जहां महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री आई वहां राजनीति का रुख बदला है और पॉलिटिकल आउटकम्स और पॉलिसी आउटकम्स भी बदले हैं, और जो कानून बने हैं वो अवश्य ही देश के हित में बने हैं। वह पूरा बता रहा है, छोटे से छोटे देश क्रोशिया रवांडा जहां महिलाओं को उन्होंने सत्ता दी है और वहां परिवर्तन आया और पॉजिटिव परिवर्तन आया है। इसलिए ये आज आरक्षण पर जो बहस चली है और जो परिणाम अभी निकला है, उमेश जी की बात मान लें कि वो लास्ट नहीं है
जी,
लेकिन वो परिणाम जो है वो अच्छा नहीं है
जी,
महिलाएं उसे स्वीकार नहीं करेंगी, ये मेरा विश्वास है।
उमेश जी आप क्या कहेंगे?
देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि एक बार वो वोटिंग जो है वो पर्ची से होगी, क्योंकि लोकसभा के जो दृश्य दिख रहे हैं हम लोगों के सामने। एक चीज है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 2023 का है उसको जिस तरह से नोटिफाइड किया गया है तो मुझे लग रहा है कि सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर यहां से जो विधेयकों को मंजूरी नहीं मिलती है, चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसे फिर राज्यसभा में ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि दोनों हाउस को अलग अलग पारित करना होता है और एक भी हाउस ने अगर रिजेक्ट कर दिया है तो कोई धन विधेयक नहीं है कि इसको आपको दूसरे हाउस में भी ले जाना जरूरी है। तो एक तो ये चीज है कि कल के जो संसद की बैठक है खासतौर पर राज्यसभा में जो पेश हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन ये है कि अब देखना होगा कि जो विपक्षी दल है, और विपक्षी दल मैं अगर कह रहा हूं तो ये विपक्षी दल दोनों राज्यों में जहां अभी चुनाव होने हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, वहां के सत्ताधारी दल हैं। अब ये देखने की बात होगी कि किस तरह से अपनी बात को इस विधेयक को गिराने के समर्थन में तर्क देते हैं और किस तरह से वो कहते हैं कि भाई हमने किस तरह से बचाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका सबसे ज्यादा बड़ा दांव अभी पश्चिम बंगाल में दिख रहा है और वो तमिलनाडु में वो उसकी सहयोगी दल है अन्ना द्रमुक की इंडिया की जो का जो गठबंधन है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव मोड में दिखेगी। वो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनको अपनी उनकी सहानुभूति हासिल करने के लिए अपनी ओर ये दिखाएगी कि देखो हम लेकर के आए लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बार बार ये तो लग ही रहा था कि इसको मंजूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल और जो संख्या बल का गणित है खासतौर पर लोकसभा का, वो भी बता रहा था क्योंकि 360-362 चाहिए होता चाहिए अगर पूरी तरह से 545 सीटों को देखें लोकसभा के जो उसकी संख्या है, तो उसमें 360-362 जुटाना सरकार के लिए मुश्किल लग रहा था। लेकिन ये जिस तरह से रुकावट डाली गई खासतौर पर डिबेट में, और ये कोई नई बात एक बार भी नहीं कही गई है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से देखिए कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण कब दोगे, जब आपको पता है कि धार्मिक आधार पर संविधान आरक्षण का निषेध करता है, उसको नामंजूर करता है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो ये कैसे दे सकती है सरकार, यानी एक अलग से फिर संविधान संशोधन लेके आइए। और दूसरी बात यह है कि जब से विधेयक आया है मैं देख रहा हूं, मैंने तो दो बार विधेयकों को फाड़े जाते हुए अपनी आंख से संसद में देखा है, मैं रिपोर्टिंग के लिए गैलरी में बैठा था लोकसभा की, तो मैं देखा है कि यही दल जो कमोबेश हैं, उसमें कांग्रेस नहीं थी, ये विधेयक को छीन करके फाड़ते रहे हैं। तो अभी ठीक है कि महिलाओं का एक बड़ा दबाव बढ़ गया है, और आजकल खासतौर पर पिछले कुछ चुनावों से आप देख रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों से, खासतौर पर बिहार के चुनाव में अभी हाल ही में देखा आपने कि पुरुष वोटरों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, तो इसको देख करके अब विपक्षी दल भी दबाव तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक होता है ना कि जो पुरानी उनकी सोच है या आदत तो नहीं कहेंगे, वो बदलने से रही, तो वो बदलना बड़ा आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है जो बार बार हम लोग कह रहे हैं ना कि महिलाओं को ताकत देने से हिचकते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो महिलाओं को आगे भी करते हैं। जैसा अगर आप याद कीजिए पिछले विधानसभा में, बिहार विधानसभा चुनाव में, एक सज्जन को, नाम लेना उनका उचित नहीं है, उनको टिकट नहीं मिल सकता था क्योंकि उन पर बहुत सारे चार्जेस थे, तो वो तत्काल शादी करके आए, जबकि उस मौसम में, उस टाइम में शादी नहीं होती है, अपनी पत्नी को आगे कर दिया और उन्होंने टिकट लिया और वो उनकी पत्नी जीत भी गई है, विधायक भी है। तो मुझे लगता है कि ये जरूरत के हिसाब से महिलाओं का जो लोग करते हैं, और मुझे लग रहा है कि आज जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये सब बात को समझ रही हैं, तो इसलिए अब जो चुनौती है वो विपक्ष के लिए बढ़ने जा रही है। जी,
अब मेरा सवाल ये है कि हमने जैसे भी आप कुछ देर पहले उमेश जी बता रहे थे कि जो 2023 में पारित हुआ था महिला शक्ति वंदन अधिनियम, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको सरकार ऑलरेडी नोटिफाई कर चुकी है, यानी कि उसने अपनी मंशा बता दी है कि ये संशोधन जो हम लेकर आए हैं वो पारित होना,
आज से लागू भी हो गया है।
तो एक तरह से आप देखें तो शायद सरकार के दिमाग में ये शायद बात थी कि शायद ये संशोधन जो विधेयक है ये पारित ना हो, तो उन्होंने एक तरह एक अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी थी, वो पूरी तरह से इस बारे में चल रहे थे ये सोचकर कि अगर ये नहीं होता तो भी हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए और हम अपनी मंशा तो एटलीस्ट लोगों के सामने दिखा सकते हैं।
कल अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने इसको इंडिकेट भी किया था कि अगर चाणक्य होते तो वो भी पिछड़ जाते, जिस तरह से प्लानिंग है सरकार की, तो उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट किया था। जी,
वैसे तो देश में बहुत बार ऑर्डिनेंसेस पहले बनते रहे, ये ऑर्डिनेंस तो नहीं है, नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन इस देश में सरकारों ने ऑर्डिनेंस पावर का बहुत प्रयोग किया है, और जब जब कानून नहीं बना पाए वो, तो वो 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस या अध्यादेश ले आए और अध्यादेश के माध्यम से जो करना चाहते थे वो कर भी लिया, तो ये तो एक पॉजिटिव है।
जी सुषमा जी, हम वापस रुख कर रहे हैं लोकसभा।
शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है, हां 298 ना 230 प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है, अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है, माननीय संसदीय।
तो अभी हमने लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला को सुना, उन्होंने साफ बताया कि मत विभाजन में जो वोट पड़े हैं 298 वोट्स हाँ और 230 वोट्स ना, यानी कि ये जो संशोधन है, ये अधिनियम है, ये पारित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जैसे कि उमेश जी भी कह रहे थे कि आगे की कार्यवाही अब संभव नहीं है। बहुत संक्षेप में मैं आप दोनों का अगला अब क्या कदम होगा विपक्ष का, और हम बात कर रहे हैं फिर भी अगर हम एग्जैक्ट की क्या अब आगे होने का आपको क्या लगता है क्या होगा आगे?
देखिए ये चुनाव होंगे और विपक्ष जो चाहता था कि इसी स्थिति में होने चाहिए, यथावत स्थिति में होने चाहिए, वो होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष और वहां पर विपक्ष बीजेपी अवश्य प्रयास करेगी कि महिलाओं को डायरेक्ट अपील करे, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले के दिनों से कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि मैं महिलाओं से सीधा डायलॉग और संवाद करना चाहता हूं।
एनडीए की सदस्य संख्या जो है वो 292 है, सरकार 6 वोट एक्स्ट्रा हासिल करने में कामयाब रही है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने अभी तालियां बजाई, खासतौर पर जो मेजे थपथपाई हैं, उनके लिए आने वाले दिन थोड़े कठिन होने जा रहे हैं, ये अभी कुछ ही दिनों बाद दिख जाएगा। जी
समय हो गया, इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।